बाबा ने हम सभी को संगम युग पर आकर वरदान दिए हैं। मिले हैं सभी को वरदान, मिले हैं माताओं को, मिले हैं, सचमुच मिले हैं या ऐसे ही बाबा ने कहा है कि दिए हैं, हमने मान लिया कि हाँ दिए तो हैं, परंतु मिले हैं, मिले हैं भाइयों को। हम अपने जीवन को वरदानी जीवन महसूस करें और सेवा में जो भाई बहने आए हैं वो सेवाओं की सफलता के लिए यहाँ क्या क्या करें, और अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए सुख शांति रहे परिवार में, संतुष्टता रहे जीवन में, इसके लिए क्या क्या करें, इस पर हम थोड़ी चर्चाएं करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे संसार का समय आगे बढ़ रहा है, सभी देख रहे होंगे दुनिया में भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं, मानसिक प्रभाव, ब्रेन पर बुरे प्रभाव, अलग अलग तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या समझते हैं जो ग्रस्त में रह रहे हैं वो बताएंगे, संसार में ये सब बढ़ रहा है या नहीं? बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। क्यों? ऐसे तो हमें शुभ बोलना चाहिए कि घट जाएगा, परंतु बाबा ने कहा है ये बढ़ता ही जाएगा। क्यों बोलो, क्यों? अति के बाद ही अंत होगा, इसलिए अति होना आवश्यक है। और बोलो क्यों बढ़ता जाएगा? पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये परिस्थिति, समस्याएं, रोग शोक बढ़ते ही जाएंगे। और हिसाब किताब भी चुकतु होने हैं, क्योंकि सबको घर जाना है। देखो आज बाबा ने कहा बिना पावन बने मैं किसी को घर नहीं ले जाऊंगा, पतित जा ही नहीं सकेंगे। तो पावन का अर्थ है पवित्र बनना भी और संपूर्ण कर्मातीत यानी विकर्मों को नष्ट करना भी। तो हिसाब किताब भी चुकतु हो रहे हैं और समस्याएं समाप्त होकर एकदम संपूर्ण शांति हो जाएगी। पहले मुझे एक दो अनुभव याद आ रहा है, वो सुना देना चाहता हूं, इसलिए मैं रुक गया बीच में। आज दीदी भी मुरली सुनाते हुए याद दिला रही थी बाबा शब्द में कितनी ताकत है। उस ताकत का एक सुंदर अनुभव किसी का सुना देता हूं, एक मिनट का है। अभी कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले महाराष्ट्र में दो भाई छाते में जा रहे थे, बरसात थी थोड़ी, एक ज्ञान वाला एक नहीं, ऊपर से बिजली गिरी और जो ज्ञान में नहीं था उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, और इसको पैरों से करंट ऊपर चढ़ा और इसने जोर से पुकारा बाबा बचाओ, भक्तों की तरह पुकारा, और तुरंत ही क्या हुआ, करंट जो यहां तक आ गया था वो वापिस उतर गया, लेकिन इसको जला गया, पैरों को डेड कर गया पूरा, लेकिन ये बच गया। फिर मुझे फोन किया, मैंने उसको अभ्यास सिखाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये अभ्यास करो, साथ में ये भी कि आत्मा से शक्तियों की किरणें जा रही हैं सारे शरीर में और पैरों में। 2 दिन के बाद उसका फोन आया कि मेरे पैरों में जान आ गई है, डेड हो गए थे पूरे, जान आ गई। आज पता चला कि उसको खड़ा किया और थोड़ा चलाया है। तो देखो बाबा शब्द का जादू, इसलिए मैं सबको याद दिलाता हूं, भूलना नहीं है। क्या इस बार बाबा ने कहा भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन कोई बुलाए ही नहीं। सोचो तो बाबा को कैसा लगेगा कि मैं जो इन्हें संपूर्ण मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं, मुझे तो ये बुला नहीं रहे और अपनों अपनों को बुला रहे हैं। तो अपने तो संसार में सदा मदद नहीं कर सकते, सबको अनुभव हो गया अपने सब पराए हो जाते हैं। मदद करता है केवल बाबा, हम उसको बुलाया करें, बहुत बड़ी शक्ति है उसमें। परसों की मुरली सुनकर एक ने मेरे से प्रश्न किया, फोन आया मुझे हरियाणा से, क्या था? बाबा ने कहा कि जो आत्मा एक जन्म भी लेती है वो चारों स्थितियों से गुजरती है, याद है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो उसका प्रश्न था, वो ज्ञान में है बहुत समय से, कि जो आत्माएं अभी अभी ऊपर से आई हैं वो गर्भ जेल में आई हैं। क्यों आई जेल में? अभी तो उनका पाप ही नहीं, सतो प्रधान स्थिति है। बोलो क्यों आई ये गर्भ जेल में? कहा बाबा ने कहा, हम जानते हैं, हम भी यही बताते हैं दूसरों को, पर ये बात मुझे आज समझ में नहीं आई, आज ही ख्याल आई कि आत्मा तो गर्भ जेल में आएगी, कलयुग के अंत में तो गर्भ जेल है, तो उसकी सतो प्रधान स्थिति कैसे हुई? डॉक्टर साहब, है ना अच्छा प्रश्न, उसको चिंतन चला एकदम से। तो मुझे भी तुरंत जो उत्तर आया मैंने उसको बताया और वो संतुष्ट हो गया। वो ये है कि गर्भ अपने में जेल या महल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे सभी। सतयुग में भी गर्भ में बच्चे की वही स्थिति है जो कलयुग में है, जिस तरह बच्चा वहां रहता है गर्भ में, कलयुग में भी वैसे ही और सतयुग में भी वैसे ही। जेल उनके लिए है जिनको गर्भ में चार पांच मास रहना बहुत कष्टकारक होता है, मानसिक सजाओं के कारण, पाप कर्मों के कारण। और महल उनके लिए है जिन्हें गर्भ में रहना ऐसा ही लगेगा जैसे परमधाम में ऐसे समय बीत गया हो। परमधाम में पता थोड़ा ही चलता है युग कैसे बीत गए, सूरज नहीं वहां, रात दिन नहीं होते, घड़ी नहीं, समय से परे है वो स्थान। तो गर्भ महल अर्थात क्योंकि आत्माओं का पाप नहीं है, इसलिए कोई भी बुरी फीलिंग मन में, पाप कर्मों की कोई फीलिंग मन में है नहीं। और द्वापर कलयुग में क्योंकि पाप है तो आत्मा को ऐसा लगता है जेल में आ गए, कब निकलें? चार पांच मास ही बहुत लंबा समय उन्हें प्रतीत होता है। तो जो आत्माएं अभी अभी ऊपर से उतरी हैं, उनके क्योंकि पाप नहीं है इसलिए उन्हें कोई भी बैड फीलिंग होती नहीं, इसलिए उनको गर्भ जेल नहीं कहा जाएगा। मैं एक प्रश्न का उत्तर और दे देना चाहता हूं। इसी व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न भी किया था और ये प्रश्न और ये उत्तर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसने कहा, दादी ने भी तो गर्भ महल में, गर्भ जेल में ही प्रवेश किया है, दादी के तो पाप खत्म हो गए थे, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर तो पहले में भी आ गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा रहस्य है जो बाबा ने कभी बताया है। और ये रहस्य बाबा ने बताया था जब दीदी ने शरीर छोड़ा, दीदी मनमोहिनी 83 में, मुझे वो याद रहता है पूरा का पूरा सीन, जो मोहिनी बहन के द्वारा आया था वतन से मैसेज बाबा का। बाबा ने ये कहा था, देखो पहली तो एक चीज कही थी जिसके बारे में आप लोगों को शायद ही किसी को कोई अंदाज हो, कि जब ये पूछ रही थी बाबा से कि बाबा आपने बताया तो बिल्कुल नहीं दीदी के बारे में, क्योंकि दीदी का शरीर छोड़ना उससे पहले की 1-1.5 मास की घटनाएं कुछ वंडरफुल थी, तो वो मैं सुना देता हूं। दीदी सवेरे उठी 3 बजे, उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता था, बाथरूम गई और चक्कर खा के गिर गई, दीवार में सिर लगा, यहां चोट लगी बहुत ज्यादा, और 3-4 दिन के बाद अव्यक्त बाबा आए, उनको पट्टी आदि लगी थी। बाबा के पास वो आई तो बाबा ने उन्हें बहुत हंसाया, क्या कहा कि दीदी आपके सिर पे तो यही ताज आ गया है, बाकी के सिर पे तो सतयुग में आएगा। बहुत हंसाया और फिर कहा दीदी आप पलंग पे नहीं हो, प्लानिंग पर हो। रहस्य भरी बात थी, लेकिन भगवान के रहस्य को कौन समझे। और जो दीदी गिरी और यहां चोट लगी उससे ब्रेन में हो गया ट्यूमर, गांठ हो जाती है। 10-15 दिन के बाद दीदी को आंखों से कम दिखने लगा, तो सोचा आई चेक कराने के लिए, आंखों को चेक कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं। गई, वहां जो चेकिंग हुई तो पता चला ब्रेन में ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किया, वो असफल हो गया और दीदी कोमा में रही 1 मास और मृत्यु हो गई। और फिर उसको यहां लाए तो बाबा ने पहला संदेश दिया कि दीदी कोमा में थोड़ा ही थी, कोमा तो यहां की भाषा है। दीदी की इच्छा थी बहुत समय से कि बाबा आप वतन में लंबा समय से रहते हो, तब 14 साल हो गए थे बाबा को वतन में रहते, मुझे वतन का अनुभव कराओ। तो बाबा ने उन्हें 1 मास वतन में रखा है, भिन्न भिन्न अनुभव कराए हैं। हम सब तो देखते ही रह गए, सोचते ही रह गए कि मनुष्य क्या सोचता है और भगवान के पास क्या है। वो उसको आनंद का अनुभव करा रहा है। कहा बहुत सारे भिन्न भिन्न अनुभव दीदी को कराए और यहां सब परेशान थे, दीदी कोमा में है, पता नहीं क्या हो रहा है। उनको जगाते थे, कानों में आवाज देते थे, बाबा बोलो बाबा बोलो, कोई कान हिला रहा है, कोई सिर हिला रहा है, कुछ नहीं होता था। तो जब मोहिनी बहन ने पूछा कि बाबा आपने बताया नहीं था, तो बाबा ने कहा इशारे तो दिए थे, आपने समझा नहीं। और कहा अच्छा अब आगे का एक बता देते हैं, 3 पिलर तो मिल गए, चौथा पिलर भी चाहिए। जान सकते हैं आप ये क्या मतलब था, बोलो, जो जानते हैं वो हाथ उठाओ, जो समझ सकते हैं इसको। नहीं नहीं, और बताओ। इसका अर्थ था कि श्री कृष्ण और राधे को जन्म देने के लिए 4 चाहिए, 3 चले गए हैं, 1 और चाहिए, किसका नंबर लगेगा आप सोच लो। पीछे चौथे भी गए थे, चंद्रविंदाई तो बहुत बाद में गई, वो तभी गए थे कुछ दिन के बाद ही, ब्रजेंद्र दादी। तो तब बाबा ने एक रहस्य बताया था, वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें जरा सा मिस करने से आप उसे समझ नहीं पाएंगे। ये मैं ऐसा समझता हूं सृष्टि चक्र का सबसे गुह्यतम राज है जो बाबा ने तब बताया था। बाबा ने कहा कि अब ये जो 3 पिलर गए और चौथा जाएगा, योग बल से संतान उत्पत्ति का सिस्टम प्रारंभ करने ये आत्माएं गई हैं। तो योग बल से सृष्टि कैसे शुरू होगी उसके बारे में एक रहस्य बताया। कहा कि देखो दीदी की आत्मा अब यहां से गर्भ में जाएगी। गर्भ तो निश्चित रूप से पतित मां बाप का ही है, पतित के द्वारा ही वो गर्भ तैयार हुआ है जिसमें दीदी ने प्रवेश किया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ध्यान देंगे, अब गर्भ में वो शरीर, बाबा गर्भ ही बोलते थे, गर्भ में जो वो दीदी का शरीर तैयार हो रहा था, अब उसको 4-5 मास लगभग हो जाते हैं तब बच्चा आत्मा प्रवेश करती है, तो 5 मास तक वो एक पिंड के रूप में तैयार हो रहा था पतित मां के गर्भ में। तो बाबा ने कहा ये शरीर 3 तरीकों से पावन हो जाता है, पतित मां के तन में पतित शरीर 3 तरीकों से पावन हो जाता है। वो तरीके हैं, कहा एक तो तुम सब जो योग करते थे जब दीदी हॉस्पिटल में थी, 1 मास सबने योग किया बहुत अच्छी तरह, कहा वो योग दीदी के लिए नहीं था, वो योग के वाइब्रेशंस गए दीदी के शरीर को। दूसरा, उस आत्मा का जो योग था उसके वाइब्रेशन से शरीर प्योर हुआ। तीसरा, यदि कोई कमी रह जाती है तो ऊपर से बाबा अपनी सकास देकर शरीर को पूरा पवित्र कर देते हैं। तो इन तीन विधियों से पतित माँ के गर्भ में पावन बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। तो दीदी जब जन्म लेगी उसका शरीर कलियुगी जैसा नहीं होगा, देवताओं जैसा होगा। तो माँ बाप दोनों श्री कृष्ण के, भले ही उन्होंने पतित माँ बाप से जन्म लिया है लेकिन वो पावन हैं, क्योंकि उनका शरीर भी पावन और वो आत्माएं भी पावन। पावन शरीर और आत्मा वाले ही योग बल से दूसरी देवताओं को जन्म देंगे। योग बल माना संकल्प बल, और योग बल का अर्थ कुछ नहीं होगा, संकल्प से संतान उत्पत्ति होगी। क्लियर हुआ? तो दीदी दादी ने जो अब गर्भ में प्रवेश किया, दादी का गर्भ में वो शरीर भी इन्हीं तीन तरीकों से पावन हो गया। तो दादी गर्भ जेल में नहीं, गर्भ महल में रही। याद होगा आपको, जिन्होंने सुना है बाबा ने संदेश दिया था कि दादी की जो माँ है उसके पेट पर लाइट दिखाई देती है अनेक बार, देखने वालों को आभास होता है, माँ बाप को कोई देव आत्मा हमारे घर में आने वाली है। ये है गर्भ जेल गर्भ महल। क्लियर हुआ? यही सबके साथ होगा। अब जो एडवांस पार्टी में आत्माएं जा रही हैं, एडवांस पार्टी का अर्थ है कि जो ब्राह्मण अब शरीर छोड़कर जा रहे हैं उन्हें हम एडवांस पार्टी कहते हैं, क्योंकि वह एडवांस में जा रहे हैं आगे संसार को बदलने के लिए। उन सब के शरीर ऐसे ही गर्भ में पावन हो जाएंगे और यही आत्माएं देवताओं को जन्म देंगी। तो जो भी अब शरीर छोड़ रहे हैं उनमें से ज्यादा आत्माएं देवताओं को जन्म देने के लिए जा रही हैं। एक और रहस्य बता देता हूं, तभी बाबा ने बताया था। जब दीदी हॉस्पिटल में जा रही थी बॉम्बे के लिए, तो छोटा सा हमारा परिवार था मधुबन में, तो दीदी दादी जब भी कहीं जाती थी सबसे बहुत अच्छी तरह मिल के छुट्टी लेके क्लास करा के जाती थी। इस टाइम से हमको क्लास हुआ। एक बहुत अच्छा रहस्य बता देता हूँ, मुझे भी अभी याद आया, बहुत दिन से भूला हुआ था ये। तो दादी आ गई थी क्लास में, दीदी अभी आई नहीं थी, 10-12 भाई आए थे केवल। तो दादी ने कहा जब तक दीदी आए मैं एक रहस्य बताती हूँ आपको। क्या? कि मैंने अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा ये बहुत सारी आत्माएं जा रही हैं, दादियां महान आत्माएं, आखिर क्या राज है इसमें? तो बाबा ने उत्तर दिया, अष्ट रत्नों को जन्म देने वाले मनुष्य आत्माएं भी बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, उनको जन्म देने के लिए ये जा रहे हैं। ये रहस्य सभी को मालूम हो जाना चाहिए। मैं एक दूसरी बात जोड़ देता हूं, कई लोग कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा में ही क्यों आया? भाई टॉपिक बदल गया है, मुझे कुछ और कहना था, वो मैं शॉर्ट में कर दूंगा। और आजकल कई लोग कह देते हैं कि शिव बाबा हमारे तन में आता है, फलानी के तन में आया, अरे उधर आ गया उधर आ गया, शंकर पार्टी वाले भी कहते इधर आ गया। सुन ले राज, शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, यदि वो ऐसे वैसे मनुष्य के तन में आ जाए तो क्या होगा? उसका ये ब्रेन फट जाएगा तुरंत। सबको ये जानना चाहिए। जब अश्रत्नों को जन्म देने वाले भी नेक्स्ट टू अश्रतन चाहिए, अश्रतन के बाद के जो है ना 16 वही चाहिए, या 24 तक, 8 को 16 चाहिए ना। तो शिव बाबा किसी के तन में भी नहीं आ सकता। मैंने एक से पूछा, शंकर पार्टी वाला आया था कहीं, कहा हमारे यहां बाबा आता है तुम्हारे यहां बाबा नहीं आता। बहुत अच्छा उत्तर है ये। उसने कहा मान लो तुम्हारे यहां बाबा आता है और बाबा ने मुरली चलाई थी हमारे यहां पहले साकार में, तो क्या बाबा अपनी ही मुरलियों में गलती निकालता है? समझ रहे हैं सभी? वो मुरलियों को करेक्ट करते हैं ना, इसका अर्थ ही है, इसका अर्थ ये गलत है ये सही है। तो प्रश्न पूछा, क्या शिव बाबा अपने ही महावाक्यों में गलती निकालता है? मेरे से कोई मिलता है मैं पूछता हूँ शिव बाबा तुम्हारे यहाँ आता है? ठीक है आता है। शिव बाबा आएगा तो मुरली सुनाएगा ना, वो मुरली मेरे पास ले आओ, शिव बाबा तुम्हारे पास आते और मुरली हमारी सुनते हो, कोई शंकर पार्टी की ओर अट्रैक्ट होता हो ध्यान से सुन लो, कई होते हैं बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो यहां संतुष्ट नहीं हो रहे वो सोचते हैं कहीं और माल मिल जाएगा चलो, लेकिन जो बाबा के पास संतुष्ट नहीं हुआ वो तीनों लोकों में चारों युगों में आगे आप बोल दो क्या कहेंगे, कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान के बहुत गुह्य रहस्य बाबा ने हम सबके सामने बताए हैं, वरदान दिए हैं बाबा ने हमें, वरदान उनके लिए वरदान बनते हैं जो वरदानों को वरदान रूप में स्वीकार करते हैं। ध्यान दें आप इस बात पर, बाबा जब पहले आते थे, नरसैया भाई को तो पता है, जो पुराने होंगे शायद आपको पता हो, सुरेश भाई, बाबा छोटे हॉल में आते थे, स्त्री हॉल में मुरली चली, अब देखते हैं मुरली रिपीट होके आ रहे हैं, छोटी मुरली, मुश्किल से एक घंटा, और फिर एक एक ग्रुप बाबा के सामने आता था, फिर एक एक मिलता था और बाबा एक एक को अच्छी अच्छी बातें कहते थे, वो थे वरदान। कोई बाबा के सामने आए, बाबा ने कहा बच्चे तुम तो विजय रतन हो, सुन के खुश होके कि बाबा ने मुझे विजय रतन का वरदान दिया, अपने घर चले गए। दो चार दिन में लगा कि मेरी तो हार हो रही है, मैं तो विजय रतन नहीं हूं। सोचते रहते हैं कि भगवान ने तो वरदान दिया था पर मैं तो विजय रतन नहीं हूं, क्या हुआ, बाबा ने गलत बोल दिया, क्या हुआ जो भगवान के कहे हुए महावाक्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? ये बहुतों के साथ हुआ, ये प्रश्न भी पूछते थे लोग, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन्होंने वरदान को वरदान रूप में स्वीकार नहीं किया, केवल ये माना कि मैं विजय रतन हूं, इससे काम नहीं चलेगा। इसको स्वमान बनाकर, इसको वरदान बनाकर, इसका बहुत सुंदर अभ्यास करना पड़ेगा। तो बाबा ने एक डेढ़ साल पहले वरदानों के लिए जो बहुत सुंदर बात बताई उसका हम सभी अभ्यास करेंगे। वो क्या है कि बाबा के द्वारा दिए गए वरदानों को रोज सवेरे याद करो, उसके नशे में आ जाओ, गुड फीलिंग में आ जाओ कि बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, और फिर कर्म के समय उसको याद करो तो वो वरदान रूप में प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। मान लो देखिए, दो चीजें संसार में हर मनुष्य के सामने रोज आती हैं, उसमें हम वरदानों को यूज करेंगे और आप सुंदर सुंदर अनुभव शुरू करें अपने जीवन में। हर मनुष्य को सफलता चाहिए और हर मनुष्य के पास कोई ना कोई विघ्न आ रहा है, रोज नहीं तो कभी कभी आता है। सवेरे आप अपने को ये वरदान याद दिलाएं, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दिए है ना सबको, बाबा मुरली में ही दे देता है। अब उसके लिए ये वरदान है जो इसको स्वीकार कर ले। अब सवेरे आप अपने को इस नशे में ले आओ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, याद करो बाबा का मुझे वरदान है, मैं विघ्न विनाशक हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी ही, और इसका परिणाम देखें। मैं तो अब तक भी एक छोटा सा प्रयोग रोज ही कर लेता हूं, रोज करना पड़ता है, हमारे यहां आप जानते हैं BSNL का टावर अच्छा काम नहीं करता, कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट फोन होते हैं, आ ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, मैं अभ्यास कर लेता हूं, और इतने सुंदर अनुभव हैं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये संकल्प करते ही जो फोन लगाया तुरंत लगता है। अनुभव के चैप्टर प्रारंभ करें सभी अपने जीवन में, कर्म शुरू करने जा रहे हैं कोई, याद करो बाबा ने वरदान दिया है, मैं विघ्न विनाशक हूं, उस कर्म में आने वाले सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भारत में प्रथा है, आप सब जानते हैं, कोई नया मकान शुरू करेंगे तो पंडित को बुला के पूजा पाठ कराएंगे, वो मंत्र जाप करेगा। वो मंत्र जाप यही होते हैं, विघ्न नष्ट हो जाए, ये काम सफल हो जाए, मेरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं, वो तो ये भी कहते हैं। वो हम जालौर के मकान के फाउंडेशन डालने गए तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, तो मैं तो थोड़ी बहुत संस्कृत जानता ही हूँ, उसने मंत्र पढ़ा, मेरे जो शत्रु हैं सबका नाश हो जाए। मैंने कहा पंडित जी इसको बंद करो जरा, ये कहो हमारे जो शत्रु हैं सबका कल्याण हो जाए। वो मुझे देखने लगा, मैंने कहा सत्य तो यही है पंडित जी। कहा भाई बात तो तुम्हारी ठीक है। वो नीचे उतरा हुआ था, गड्ढे में खोदा हुआ था ना, जहाँ वो ईंट पत्थर डाल रहे थे, तो मैं पूजा पाठ करके मंत्र जाप कर रहा था, बहनों ने बुलाया था पंडित को, सबने कहा कि भाई यहाँ की रस्म है, आप इस पंडित को बुलाओ, नहीं तो बिना मतलब लोगों में डिसर्विस होगी, गलत समझेंगे लोग, समझेंगे भाई पंडित को बुलाया, उसको दक्षिणा भी दे दी, सब लोग फेवर करेंगे, अच्छे वाइब्रेशंस होंगे। तो हम कर्म क्षेत्र पर इन वरदानों को याद किया करें और कम से कम हर एक 3 वरदान अपने लिए चुन लें। कोई भी, मैं माया जीत हूं, माया को जीतना सहज काम नहीं है, सब जानते हैं, कितने योद्धा माया से लड़ते लड़ते मैदान छोड़कर भाग गए अब तक। अगर 9 लाख ब्राह्मण अब हैं तो कम से कम 3-4 लाख तो हार मान के वापिस चले गए हैं। माया को जीतना हम सबके लिए सहज भी है, लेकिन अगर हम साधनाएं न करें तो अत्यंत कठिन भी है। तो हम सब इस वरदान को वरदान बना लें, मैं माया जीत हूं। जिसको नींद आती हो, मैं निद्रा जीत हूं। कईयों को आती है ना योग में बैठते ही नींद, वैसे कहेंगे शायद रात नींद नहीं आई, मुरली सुनते ही आत्मा शांत होके नींद करने लगेगी, तो वो ये अभ्यास कर ले। मुझे एक कहानी और याद आ गई, बहुत अच्छी, इस पर है, ये बनावटी कहानी नहीं, एक जैन मुनि की कहानी है, हम किसी गिलानी नहीं कर, बात जो आज भी बाबा की मुरली में थी, बहुत सुंदर बात, योग बल से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती है। वहां तो कहते हैं बूढ़ों की होती है, बूढ़ों की भी नहीं होती आजकल तो, तुम्हारी छोटों की हो जानी चाहिए योग बल से। और आपने सुना हो बहुत सुंदर रहस्य, बाबा ने कहा जब मैं इसके तन में आया, ब्रह्मा के तन में, तो मैंने अपनी सकास देकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया पहले ही दिन से। तो ब्रह्मा बाबा का तो पुरुषार्थ कैसा हो गया, जिसके लिए लोगों को जीवन लगाना पड़ रहा है, उसी बाबा को रथ देते ही काम हो गया पहले ही क्षण। कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितना बड़ा किराया मिला। तो कर्मेंद्री जीत हम सबको बनना है। ये एक माता है जैन परिवार से, जिसने अपना अनुभव सुनाया, 2-2.5 मास पहले सुनाया मुझे, हम ऐसे बात कर रहे थे, भट्टी में कहीं गए थे कर्मेंद्रीय जीत पर, क्योंकि जैनियों के घर में मंत्र लिखा रहता जय जिनेन्द्र, जो आप में से जैनी हो जानते होंगे, जय जिनेन्द्र, यानी जिन्होंने कर्मेंद्रियों को जीता है उनकी भी जय हो। और जैन मुनियों का विशेष लक्ष्य कर्मेंद्रियों को जीतना ही होता है, मनोविकारों को जीतना, आसक्तियों को जीतना। तो वो सुना रही थी कि भाई हमने तो ये सब इसलिए छोड़ दिया कि हमने देखा उधर कुछ मिलने वाला नहीं, अब हम तो नाम के जैन हैं, पर असली जैन अब बने उधर नाम के, असली जैन। जैन शब्द जिन से बना, जिन माना जितेंद्रिय, जो मनुष्य जितेंद्रिय हो वही जैन है, बाकी तो नाम और जाति ये कुछ नहीं है। जैन धर्म भी नहीं था, आप सबको मालूम हो शायद 91 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें इन्होंने अपने को रिकॉग्नाइज कराया था कि जैनियों को भी एक धर्म के रूप में स्वीकार कराओ, अन्यथा ये हिंदू धर्म की एक शाखा है। सब जानते हैं जैन धर्म में हिंदू धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, एक भी बात अलग से नहीं है। तो माता सुना रही थी कि हमारे घर में जैन मुनि को भोजन के लिए बुलाया गया, एक ही टाइम वो भोजन करते हैं, निमंत्रण दिया जाता है, बाकायदे पूजा पाठ करके उनको लाया जाता है, ढोल ढमाके बजाकर बैठ गए भोजन पर। भोजन देखते ही त्योरियां चढ़ गई मुनि देव की, कहा कि खीर नहीं बनाई, कि महाराज दूध तो नहीं था आज, इसलिए खीर तो नहीं बनाई, और महाराज जी नाराज हो गए और उठ के चल दिए। और उनको मनाने के लिए 10-20 लोग उनके साथ चले, और मुनि जी सबको हाथ पैर इधर उधर करते हुए तेजी से चले जा रहे हैं गुस्से में। अब उनको अगले दिन तक भूखा रहना है, ये उन्हें पता है, और जिनके घर से गए उन्होंने सोचा है तो बड़ा अपशगुन हो गया, भाई मुनि देव मुनि हमारे घर से बिना खाए चले गए, पता नहीं क्या आफत आ जाएगी हमारे परिवार पे। तो लेकिन मुनि जी माने नहीं, इनके घर में भी उदासी छा गई और मुनि जी भूखे सोए होंगे, नींद तो नहीं आई होगी, अगले पिछले दिन के भी तो भूखे थे और अगले दिन भी भूखे रहे क्योंकि अगले दिन रात को ही खाना है कहीं। तो हंस रही थी कि भाई हमें तो तब से वैराग हुआ कि इस सब से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, तभी कोई ज्ञान में थे जैनियों के, उन्होंने ज्ञान दिया हुआ था, हम तो पूरे के पूरे सच्चे जैन बनने के लिए इधर आ गए। तो देखिए जिस मनुष्य की खान पान पर ही विजय न हो क्या वो योगी होगा? खाना तो सारा ही बहुत अच्छा था, केवल खीर नहीं थी ना, और भी मिठाइयां कई थी, केवल खीर नहीं थी। या तो उसे पहले बता देना चाहिए था भाई मैं खीर प्रेमी हूं, खीर अवश्य बना लेना, लेकिन बताया भी नहीं, तो ऐसा हाल धर्मों का हो गया है। इसलिए धर्म में बल नहीं रहा, क्योंकि धर्म नेताओं में बल नहीं। आज की मुरली की एक लाइन बहुत सुंदर थी कि मनुष्यों को पता ही नहीं कि भगवान भी धर्म स्थापित करता है। इतना तो सुना है कि गीता ज्ञान दिया उसने, लेकिन भगवान भी धर्म स्थापित करता है। जिस धर्म में सबसे अधिक शक्ति होती है वो किसी को पता नहीं है। तो आप सभी यहाँ आए हैं, सेवा में आए हैं, मैं सभी सेवा में आए हुए भाई बहनों को विशेष रूप से कहूंगा, अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी स्थिति को व्यर्थ से मुक्त करने के लिए और जीवन के अनेक समस्याओं के समाधान के लिए भी, सभी यहां से ही शुरू करें बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास। स्वमान वरदान का रूप ले लेता है, स्वमान से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य हैं स्वमान में, स्वमान के बारे में। देखिए एक महावाक्य को हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, जहां स्थिति श्रेष्ठ है वहां परिस्थितियां कुछ भी नहीं, और स्थिति श्रेष्ठ बनती है श्रेष्ठ स्वमान से। ये ले ले हम अपने पास, जितना हमारा स्वमान श्रेष्ठ होगा स्थिति श्रेष्ठ होगी, स्थिति श्रेष्ठ होगी परिस्थितियां जाती रहेंगी। आज मुझे एक माता मिली, यहां बैठी है, उसने मुझे बताया, सुना देता हूं कहानी। माता जी बैठी होंगी राजपूत परिवार से जो है, तो हाँ, तो उसका, अब उसको बेचारी नहीं कहेंगे हम, शादी होते ही कुछ समय के बाद ही पति ने शरीर छोड़ दिया था, और राजपूतों में दोबारा शादी नहीं होती, सती होने का विधान होता था ना राजपूत परिवारों में, सती प्रथा बंद हुई। तो कहा कि बस फिर बाबा का ज्ञान मिला और पूरी तरह से आनंदित जीवन हुआ, और कहा कि जिस जिसको मैंने ज्ञान दिया सब ज्ञान में आ गए, परिवारों के बहुत सारे लोग। तो ये एक बहुत सुंदर रहस्य है, सभी यदि अपनी परिवारों को बहुत अच्छी तरह बाबा से जोड़ना चाहते हैं तो स्थिति पर ध्यान दें। स्थिति श्रेष्ठ उसे ही कहा जाता है जिसकी प्योरिटी श्रेष्ठ हो और जिसका योग श्रेष्ठ हो, जिसमें स्वमान भी आ गया है, शरीरीपन, इस पर हम ध्यान देंगे। सेवा बहुत होगी स्वतः ही जिसमें ये दो आकर्षण हैं। आपने सुना है बाबा का एक महावाक्य कि वो सन्यासी गुरु भी जो बहुत पवित्र हैं, उनको जंगलों में ही भोजन पहुंचता था, उनके शिष्य भी बहुत स्ट्रांग होते थे, और जो सन्यासी पवित्र नहीं रहे, अभी नहीं रहते सन्यासी पवित्र, नहीं रहते बड़े बड़े गुरु भी नहीं रहते हैं, आप में से बहुत तो नहीं जानते हूं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। मैंने एक सन्यासी से पूछा था ऐसे ही महामंडलेश्वर से, मैं एक बार बहुत महामंडलेश्वरों से मिला था 78 में, जब हमारे यहाँ सन्यासियों की सेवा नहीं होती थी, मैं हरिद्वार ऋषिकेश गया, तो एक महामंडलेश्वर से मैंने पूछा, ये नहीं पूछा आप पवित्र रहते हो क्या, मैंने पूछा ये बहुत सारे जो महामंडलेश्वर हैं ये पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं क्या ब्रह्मचर्य में। तो ये सुन के तो उसको गुस्सा आ गया, मेरे पर नहीं सन्यासियों पर, कहा ये एक एक पांच पांच रखते हैं, वो सबके बीच में बोल रहा। मैंने कहा क्यों, सन्यास का संबंध तो संपूर्ण पवित्रता से है। कहा देखो भाई सच्ची बात ये है, सिद्धांत ये है कि सन्यास लेने से पहले एक काल गुजारना पड़ता है, एक समय गुजारना पड़ता है जिसे ब्रह्मचर्य काल कहते हैं। जब वो व्यक्ति साधना करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, जब वो सन्यास की दीक्षा ले लेता है तो सन्यासी माना स्वतंत्र मुक्त, वो पवित्र रहे या न रहे इससे उसका कोई लेना देना नहीं। तब मेरे समझ में आया, इसीलिए हिंदू धर्म ने भी अपनी सारी शक्ति खो दी है, क्योंकि उसके नेता ही पवित्र नहीं हैं, जिनके पीछे संसार पागल होकर घूमता है उनमें ही पवित्रता नहीं है, तो संसार को क्या देंगे, बिना पवित्रता के तो साधना होती नहीं। इसलिए प्राय सभी सन्यासी साधना नहीं करते, पूजा करते हैं। मैं शंकराचार्य के आश्रम में गया था 79 में ही, उत्तराखंड का शंकराचार्य हिमालय में, वो वहां नहीं था, उसके शिष्य थे, बहुत प्यार से मिलते थे, हमें अपने यहाँ रहने को स्थान दिया, खाने पीने के स्टोव सब्जियां आटा सब ला दी के बनाओ खाओ। मंदिर में ले गए अपने, दुर्गा देवी की मूर्ति थी बहुत भव्य, मैंने कहा इसको क्या करते हैं भाई सन्यासी माता जी को। कहा शंकराचार्य रोज 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को पूजा करते हैं, साधनाएं नहीं होती, क्योंकि बिना बहुत बड़े त्याग के, बिना पवित्रता के कोई साधक नहीं हो सकता। उनकी भी साधना है ध्यान लगाने की, मन को निर्संकल्प करने की, पर हम सब जानते हैं मन को निर्संकल्प करना कोई छोटा काम नहीं है। तो हम सभी अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, श्रेष्ठ स्वमान से श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियां जाएंगी। दूसरी चीज बाबा का ही महावाक्य है, पक्का कर लेंगे सभी, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेदार है बाबा, और जो अपसेट रहते हैं, अपसेट माना स्थिति बिगाड़ते रहते हैं, उनके जिम्मेदार हैं वो खुद। अगर हम ये पक्का कर देना चाहते हैं कि हमारी हर जगह जिम्मेदारी भगवान के हाथों में हो, तो स्वमान की सीट पर सेट रहें। स्वमान आप सब जानते हैं, बहुत गहराई से फील करें मैं एक महान आत्मा हूं। ये फीलिंग ऐसी फीलिंग है कि एक दो बार भी मनुष्य अपने अंदर भर दे जीवन बदल जाएगा, दो चार बार करने से ही। जिनसे ऐसा नहीं होता मैं उन्हें कहता हूं 108 बार करो, लिखाता भी हूं, पर यदि हम इसको गहरी फीलिंग में उतार दें, ये सच है कि मैं संसार में सबसे अधिक महान हूं, तो जीवन बहुत जल्दी महान बन जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, पूर्वज हूँ, ये सब हमारे स्वमान है ना, सब जानते हैं ना। इनका अच्छा अच्छा अभ्यास करें, इनको साधारण नहीं समझें। इसी को वो कहते हैं कि स्वयं को जानना बहुत कठिन काम है। केवल मैं आत्मा हूँ हमने ये जान लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हमने स्वयं को जान लिया, ये तो जानने की शुरुआत की है। मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, ये सब हम जान जाएंगे। अगर हम बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगे तो हमें यह आभास होता रहेगा इस सृष्टि चक्र में हम कहां कहां से होकर आए हैं। तो हमारा जिम्मेदार बाबा है। और एक लास्ट बात आप सबको कहूं, बहुत सुंदर चीज है, उसका अभ्यास करके अनुभव करेंगे सभी। जीवन में अनेक बातें मनुष्य के पास ऐसी आती हैं, रोज आए या हफ्ते में एक दिन आए, जिनमें मनुष्य ठीक से निर्णय नहीं ले पाता, ये करूं या ये करूं, ये ठीक होगा या ये होगा, मन भारी भी हो जाता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसी बातों को बाबा पर समर्पित किया करें, यानी बाबा के हाथों में सौंप देंगे, तुम अब जैसे चाहे कर दो, तो बहुत सुंदर मार्ग निकाल देता है बाबा, जो हमारे मन की उलझने हैं उनको समाप्त कर देता है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव सुना दूं एक व्यक्ति का, ये बात 68 की है। 68 में जब मैं दिल्ली में था तो रजौरी गार्डन दिल्ली में एक भाई आते थे, अच्छे ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, उनकी नौकरी छूट गई, एमपी के पास गए और जो पार्षद दिल्ली के थे उनके पास गए, मिनिस्टरों से मिले, कुछ नहीं हुआ। मेरे से उनकी अच्छी बनती थी, मैं छोटा था वो बड़े थे। तो गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगवाया, तब तो संदेशी बहनें भोग लेके जाती थी, संदेश आता था, प्राय हर सेंटरों पर एक एक संदेशी बहन होती थी। तो बाबा ने उसको जाते ही एक उलझा हुआ धागा दिया कि लो बच्ची जरा इसको सुलझा दो, खोल दो। अब वो उसने वो छोटा सा धागा लिया, जहां से वो खोले वो गांठ बंधी जाए, फिर खोलने की कोशिश करे और उलझ जाए, दो चार बार किया उलझता गया, बाबा ने कहा लाओ मुझे दो, लिया और एक कोना पकड़ा और ऐसे किया और वो खुलता गया। बाबा ने कहा बच्चे अपनी समस्या बाप को नहीं देते, खुद ही सुलझाते रहते हैं। बस ये संदेश था, बस उसने वहीं से समर्पित की अपनी समस्या बाबा को और मुश्किल से एक हफ्ता लगा होगा वो बहाल हो गए। तो हम जीवन की अनेक दुविधाओं को बाबा पर समर्पित करने के अनुभव बढ़ाएं, विनाश काल में ये अनुभव भी बहुत काम आएंगे। जिम्मेदारी सौंप दें अपने जीवन की, अपने परिवार की, केवल अपने जीवन की नहीं, परिवारों की जिम्मेदारी सौंप दें बाबा के हाथों में। एक सीन बनाया करें कि एक नाव है, उसमें हम सब बैठे हैं, मैं भी हूं, परिवार भी बैठा है, और उस नाव को चला रहे हैं बाप दादा। संकल्प कर लो बाबा हम सब की जीवन नैया तुम्हारे हाथों में, बहुत सरलता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। और बाबा नाव चाहे कितने भी तूफानों में हो निकाल कर आराम से पार ले जाएगा, जीवन नैया कहीं अटक गई है उसको पार लगा देगा। हमें इन चीजों के अनुभव बढ़ाने चाहिए, तब विश्वास बढ़ेगा। कईयों में पहले ही विश्वास की कमी है तो अनुभव नहीं बढ़ते, विश्वास धारण करें, अनुभव बढ़ेंगे और वो विश्वास बहुत मजबूत होता जाएगा, जो विनाश काल में हम सबको काम आएगा। तो चले हम सब अपने को तैयार करें, आने वाला समय हमसे बहुत कुछ मांगेगा, लाल लाइट कर दें भाई, बहुत कुछ मांगेगा। हमें संसार को देना है, हम जब इस संसार से जाएं तो संसार को बहुत कुछ दे कर जाएं, ऐसा संकल्प लें। और अब बाबा से किरणें प्राप्त करेंगे और संसार को देंगे।